आपकी बाह्य आराधना करने में तो मैं असमर्थ हूं। इस समय बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं और एक प्रकार से इस शरीर से शरीर में रहने का प्रारब्ध समाप्त होने के कारण और कुछ भी शरीर से करना संभव नहीं है। एक प्रकार से इस स्थूल शरीर के गोलकों में से उपासक के बाह्य कर्मेंद्रियों का भी, वागादि इंद्रियों का भी और इनका ज्ञानेन्द्रियों का भी उत्क्रमण हो चुका है। जीव ने अपने अपने गोलकों में स्थित जो इंद्रियां थी उन्हें एक प्रकार से हृदय में खींच लिया है, इसलिए बाह्य वागादि इंद्रियों से प्रार्थना भी संभव नहीं है। वाग इंद्रिय से भगवान की प्रार्थना भी उपासक देख रहा है संभव नहीं है, क्योंकि ये नियम है कि जब तक कोई भी सूक्ष्म शरीर का अंग उसके अपने अपने गोलक में स्थित नहीं होता तब तक कोई कार्य नहीं कर पाता। वाग इंद्रिय हो लेकिन वाग इंद्रिय का गोलक जो मुख है उसमें वो स्थित न हो तो बोल नहीं सकती। चक्षु इंद्रिय ये जो उसका गोलक है बाह्य चर्म चक्षु दिख रहा है उसमें जब तक स्थित नहीं होता तब तक वो देख नहीं सकता, रूप का ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये बाह्य इंद्रियों का तो उपासक के अंतिम समय में उत्क्रमण हो चुका है। शरीरांतर की यात्रा के लिए अभी बिल्कुल तैयारी हो चुकी है इनकी, तो उस समय उपासक बाह्य कुछ भी आराधना अपने ईश्वर की नहीं कर सकता। इसलिए कहता है कि नम उक्तिम भूरिष्टान्ते नम उक्तिम विधेम। इस समय तो हम आपको मात्र नमस्कार कर सकते हैं, तो इसलिए भूरिष्टाम यानी पर्याप्त खूब नमस्कार वचन मैं बोलता हूं, अनेकों बार आपको मैं नमस्कार मात्र कर सकता हूं। तो मतलब नमस्कार से अतिरिक्त तो दूसरी कोई आराधना इस समय हम असमर्थ होने के कारण कर नहीं सकते। और नमस्कार का भी बड़ा महात्म्य है, फल है। यहां तक कि शास्त्र तो कहता है कि नमस्कार मात्र से ही मुक्ति मिलती है। एकश्च कृष्णस्य कृतः प्रणाम सहस्त्र मेधाव भृतेन तुल्य सहस्त्र मेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कहते हैं कि कोई एक बार भी भगवान कृष्ण को नमस्कार कर ले तो हजारों अश्वमेध याग के समान वह एक बार का नमस्कार है। लेकिन हजारों अश्वमेध कोई कर भी लेता है तो कहते हैं लेकिन अश्वमेध करने वाले का भी पुनर्जन्म होता है। सहस्त्र मेधी पुनरेति जन्म और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। और भगवान कृष्ण को यदि एक बार नमस्कार किया तो उसका पुनर्भव यानी पुनः जन्म नहीं होता। जन्मांतर न होना यही तो मुक्ति है। और शिव मेमना स्तोत्रकार कहते हैं भगवान शिव को संबोधित करके, चाहे भगवान शिव कहो या कृष्ण कहो एक ही है। कृष्ण शब्द का अर्थ भी होता है नित्य आनंद। कृषिर भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक तयो रैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति को बताते हुए इस श्लोक में ये बताया गया कि कृष्ण शब्द में जो कृष ये प्रकृति अंश है उसका अर्थ है भू, और भू का अर्थ होता है सत्ता यानी विद्यमानता, और ण का अर्थ है सुख। तो कृष का अर्थ सत्ता और ण का अर्थ सुख, इन दोनों को यदि मिलाते हैं तो अर्थ होता है सत्य आनंद, नित्य आनंद। तो नित्य आनंद एक परमात्मा का ही स्वरूप है। विषय सुख तो अनित्य सुख है, यो वै भूमा तत्सुखम के अनुसार भूमा कहते हैं ब्रह्म को, अपरिछिन्नता को, वही सुख है। और उसी भूमा सुख को यहां पर कृष्ण शब्द बताता है, और ब्रह्म के लिए मांडुक्य उपनिषद में शिव शब्द का भी प्रयोग आया है। चाहे शिव कहो या कृष्ण कहो, एक ही बात है। तो शिव महिमना स्तोत्र में भगवान शिव को एक बार कोई नमस्कार करता है तो उतने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है, ऐसा अपने अनुभव से पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि मेरा ये अनुभव है कि मैंने भगवान शिव को नमस्कार किया और मैं मुक्त हो गया। सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं, पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं, अनुभव बता रहा हूं। उनका एक श्लोक है, सभी शिव महिमा स्तोत्र में तो नहीं छपा, कहीं कहीं छपा है। वपुष प्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारेन क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् नमन्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनुरग्रेप्यनतिमान् इति स क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि। इस श्लोक में पुष्पदंताचार्य जी भगवान शिव को कह रहे हैं कि मेरे से दो अपराध हुए हैं, एक तो हुआ है और एक होने जा रहा है, जान करके भी होने जा रहा है, और एक हुआ है, एक अतीत में अपराध हुआ है उसके लिए भी क्षमा भगवान शिव से मांग रहे हैं, और एक भविष्य में होगा और उस अपराध की के लिए एडवांस में क्षमा मांगते हैं, पहले से ही क्षमा मांगते हैं। भविष्य में अपराध होगा उसकी क्षमा पहले से ही कर लो। अपराध क्या है तो कहते हैं नमस्कार भगवान शिव को न करना, यह अपराध है। शिव को नमस्कार न करना अपराध है, क्योंकि नमस्कार ही मुक्ति का साधन है, और मुक्ति का साधन भूत नमस्कार यदि हम नहीं करते हैं तो मनुष्य जीवन मिला है इसी के लिए, जिसके लिए हमें जो साधन मिला है उसके लिए उसका उपयोग न करें तो एक प्रकार से अपराध है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है मुक्त होने के लिए, और मनुष्य शरीर से हम मुक्ति का साधन भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, और वह मुक्ति का साधन भूत नमस्कार न करें तो ये मनुष्य का अपराध है। और ये अपराध कहते हैं मैंने अनेकों जन्म से अभी तक किया है, करता ही आ रहा हूं ये अपराध। तो कहते हैं मैं एक अनुमान करता हूं कि अभी तक इस अनादि संसार में मेरे असंख्य जन्म हुए, लेकिन किसी भी जन्म में मैंने आपको नमस्कार नहीं किया, ये मैंने अनुमान कर लिया। अनुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान्। इन शब्दों से कह रहे हैं कि हे त्रिपुरारे यानी त्रिपुरासुर राक्षस का मर्दन करने वाले भगवन, आपको मैंने इस अनादि संसार में असंख्य जन्म लेकर के एक बार भी नमस्कार नहीं किया। कैसे मालूम हुआ आपको कि अभी तक एक बार भी नमस्कार नहीं किया करके, ये कैसे अनुमान किया? जैसे दूर से अग्नि को, धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान करते हैं कि जिस स्थान से धुआं निकल रहा है उस स्थान पर अग्नि जरूर है, क्यों? क्योंकि अग्नि के बिना धुआं होता नहीं। ऐसे मैं भी अनुमान कर रहा हूं, इस अग्नि का अनुमान करने के लिए हेतु क्या हुआ? धुएं का दर्शन, धुएं को देखा, अग्नि का अनुमान किया। ऐसे आप कैसे अनुमान कर रहे हो कि पहले जन्म में हमने कभी भी आपको नमस्कार नहीं किया? ऐसा यदि शिव पुष्पदंताचार्य जी को पूछते हैं तो पुष्पदंताचार्य जी इसका हेतु बताते हैं कि वपुष प्रादुर्भाव, वपु कहते इस शरीर को, ये शरीर जो मुझे प्राप्त हुआ, जन्म हुआ मेरा, और आपके नमस्कार का फल है मुक्ति। यदि मैंने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आपको नमस्कार किया होता तो मेरा जन्म न होता। मुक्त का अर्थ ही होता है कि उसका जन्म नहीं होता, इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता। और आपको नमस्कार करना ये मुक्ति का साधन है, मुक्ति का साधन भूत आपको नमस्कार यदि मैंने किया होता तो निश्चित ही मैं मुक्त हो जाता, लेकिन मैं मुक्त नहीं हुआ क्योंकि मेरा जन्म हुआ है वो पुष्प प्रादुर्भावात। ये मैंने अनुमान कर लिया, ठीक अनुमान हुआ। और अब कहते एक अपराध तो ये हुआ ना कि अतीत में इस अनादि संसार में अनेकों जन्म प्राप्त करके भी भगवान शिव को मुक्ति का साधन भूत नमस्कार नहीं किया, ये एक अपराध है। और कहते हैं एक भविष्य में अपराध होने जा रहा है कि भविष्य में भी मैं आपको नमस्कार नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? कहते इसलिए कि अभी मैंने आपको नमस्कार किया है और नमस्कार करते ही मैं मुक्त हो गया। नमन मुक्त संप्रति अतनु अहम अग्रेति अनतिमान। कहते इस समय मैंने नमस्कार किया और मैं तुरंत मुक्त हुआ। ये श्लोक वपुष प्रादुर्भावात कहां पर है? इससे पहले, इस श्लोक के पहले शिवमेमना स्तोत्र में श्लोक आता है कि नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय नमः। इसमें नमस्कार ही नमस्कार है भगवान शिव को, और उसके बाद में ये श्लोक है। तो कहा कि नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः इत्यादि से मैंने अभी अभी आपको नमस्कार किया और उस नमस्कार का फल हुआ कि मैं मुक्त हुआ। मुक्त होने के बाद में क्या होगा कि भविष्य में मुझे शरीर प्राप्त नहीं होगा, और बिना शरीर के नमस्कार कैसे होगा? तो नमन मुक्त संप्रति अग्रेप्य अनतिमान, मुक्त होने के कारण मैं भविष्य में भी नमस्कार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे शिव आप क्या करिए कि मेरे इन दोनों अपराधों की क्षमा करिए, अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं कि इति शक्षन्तव्यम तदिदम अपराध द्वयमपि, इन दोनों अपराधों की के लिए आप मुझे क्षमा करें। का मतलब यहां पर वपुष प्रादुर्भावात इत्यादि से नमन मुक्त संप्रति इन शब्दों से बताया जा रहा है कि नमस्कार भी मुक्ति का साधन है, नमस्कार मात्र से मुक्ति होती है। वो नमस्कार कौन सा होगा? आप हम सत्संगी हैं, न जाने मंदिर में जाते हैं और कितने बार अभी तक नमस्कार कर चुके हैं भगवान को, लेकिन कहते हैं वो नमस्कार मुक्ति का हेतुभूत कुछ और है। और ऐसे ही मंदिर में जाते हैं, नमस्कार करते हैं, और फिर उसको हम जैसे पहले सुख दुख के अनुभविता थे वैसे अनुभविता बने रहते हैं तो माना जाता है नमस्कार नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं नमन मुक्त संप्रति का मतलब नमस्कार करते ही मुक्त हुआ, जैसे भोजन करते ही करते तृप्ति होती है, भूख की निवृत्ति होती है, ऐसे नमस्कार करते ही मुक्ति मिलती है। वो नमस्कार है कि जैसे कहा जाता है ना कि नाम बहुत लोग लेते हैं, लेकिन मीरा ने जो नाम लिया वो नाम कुछ और ही था। भगवान के एक नाम मात्र से कहते सारे पाप दग्ध हो जाते हैं, भगवान का दर्शन होता है। लेकिन वो नाम जिनको एक नाम मात्र से ही सारे पाप समाप्त होते हैं, भगवत दर्शन होते हैं, ऐसा नाम उच्चारण हम नहीं कर पाते हैं। हनुमान चालीसा का कितने हजार क्या लाख बार पाठ हुआ होगा, लेकिन हनुमान चालीसा के फलश्रुति में क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, यह शत बार पाठ कर को ही छूट ही बंदी महासुख हुई। और कितने हजार पाठ हमारे हुए होंगे, तो सौ के तो ज्यादा ही हुए, तो बहुत अधिक होना चाहिए था ना सुख, महासुख, लेकिन नहीं हो रहा। का मतलब वो सौ पाठ हमसे हो ही नहीं पाते हैं जैसे अपेक्षित है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय केवल हनुमान चालीसा के अर्थ में ही हमारा मन लगा रहे और एक क्षण के लिए भी दूसरी वृत्ति न बने, ऐसे सौ पाठ कर लो, उसकी जो फल, उसका जो फल बता है वो फल जरूर मिलेगा। एक सौ बार पाठ करते समय लगातार आपका मन हनुमान चालीसा का जो अर्थ है उसी अर्थ में मात्र घूमता रहे, दूसरे अर्थ का कोई चिंतन आपके अंदर न हो, ऐसे सौ पाठ आप जिस समय करेंगे उसका फल आपको देखने को मिलेगा। छूटे ही बंदी महासुख हुई। और वहां लिखते समय अभिप्राय यही है कि अर्थानुसंधान पूर्वक यदि कोई पाठ करता है तो उस पाठ का महत्व है। ऐसे यहाँ का नमस्कार भी इसी प्रकार का है, नम भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम इत्यादि में जो बताया जा रहा है वो है अपने यहाँ नमस्कार करने की पद्धति वैदिक संस्कृति में क्या थी कि जिसको सबको नमस्कार भी नहीं किया जाता। वस्तुतः ही जो श्रद्धेय हैं उनको आप नमस्कार करते हैं, श्रद्धास्पद हैं आपके जो, और श्रद्धा नमस्कार ऐसे हाथ जोड़ना मात्र नहीं, शीर को उनके चरणों में रखा जाता था। शीर होता है अहंकार का द्योतक, और शीर किसी के सामने झुक गया, किसी के चरणों में पड़ा का मतलब अहंकार वहां पर हमने छोड़ दिया, अपने अहंकार को समर्पित कर दिया। यहां नमस्कार से ही आराधना हो रही है। तो मंदिर में आप जाते हैं पूजा की सामग्री लेकर के भोग आदि लगाते हैं तो भगवान को समर्पित करते हैं, तो फिर वो आपकी वस्तु नहीं रहती, वो भगवान की हो गई, भगवान को समर्पित कर दी। तो शीर आपने भगवान के चरणों में रख दिया का मतलब अपना अहंकार भगवान के चरणों में रख दिया, तो माना जाता है भगवान को नमस्कार हो गया। और एक बार फिर अहंकार भगवान को समर्पित कर दिया तो उठाना नहीं होता वहां से, यदि नहीं तो मंदिर में आप पूजा की सामग्री पुष्प आदि सब लेकर के जाते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं तो साथ में फिर उठा करके ले आते हैं क्या, नहीं लाते, वही भगवान की हो गई वो जिसको समर्पित कर दी। ऐसे आपने शीर भगवान के चरणों में रख दिया का मतलब अपने अहंकार को भगवान को समर्पित कर दिया। अब आपका अहंकार आपके पास नहीं रहा, जो भगवान को दिया वो भगवान की वस्तु हो गई, आपने अपना अहंकार भगवान को समर्पित कर दिया भगवान का हो गया, तो वो अहंकार फिर दोबारा नहीं आना चाहिए। तो कोई भी कार्य जो है अहंकार पूर्वक होता है तो वो बंधन का हेतु बनता है। अहंकार है अनात्मा, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आत्माभिमान, और उसी से तो वो कर्ता बनकर के बंधन में पड़ जाता है। गीता कृति प्रकृति क्रियमानानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। वो अहंकार जिस दिन ठीक से आपने भगवान के चरणों में रख दिया और वो भगवान के चरणों में ही रखा रहा, आपने उसे नहीं उठाया, तो माना जाएगा कि वह आपका नमस्कार ठीक से हो गया। और उस प्रकार का नमस्कार हो जाए तो वो नमस्कार क्या हो जाएगा, आपके मुक्ति का हेतु होगा। भगवान के चरणों में रखने का मतलब भगवान के स्वरूप में रख दिया अहंकार को, आपका अहंकार अनात्मा शरीर आदि में से निकल गया और भगवान के स्वरूप में स्थापित हो गया, भगवान को उसने विषय बना दिया। तो जिसका अहंकार जहां होता है उसको उसी की अनुभूति होती है मैं के रूप में। तो आपका अहंकार अभी शरीर में है, तो जहां जिसका अहंकार है उसी की मैं के रूप में उसको अनुभूति होगी। हमारा अहंकार अपने शरीर में है इसलिए अपने शरीर की ही मैं के रूप में हमें अनुभूति होती है। जिसका जहां अहंकार है उसे वही आत्मा के रूप में अनुभव में आएगा। तो यदि भगवान को नमस्कार कर दिया का मतलब भगवान में हमने अहंकार को स्थापित कर दिया, तो भगवान में जिसका अहंकार स्थापित हो गया तो उसे मैं के रूप में कौन अनुभव में आएगा, उसको मैं के रूप में अनुभव में आएगा भगवान ही, परमात्मा ही। और परमात्मा का मैं के रूप में जिसको अनुभव हो रहा है उसका जन्म हो सकता है, परमात्मा का जन्म नहीं होता। गीता कहती है न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं जिसका जहां अहंकार है वही उसको मैं के रूप में देखेगा। अभी जन्म लेने वाला मरने वाला जो शरीर, उसमें हमारा अहंकार होने से हम अपने आप को जन्म लेने वाला मरने वाला अनुभव कर रहे हैं। और वही अहंकार जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ऐसे स्थान पर स्थित हो जाए, रखा जाए निकाल करके, तो क्या हो जाएगा, फिर हम भी जन्म से रहित होंगे। तो पुष्पदंताचार्य जी ने जो कहा कि नमन मुक्त संप्रति, का मतलब इस समय मैंने नमस्कार किया और मैं मुक्त हुआ, का मतलब है कि अपने अनात्मा शरीर आदि से आत्माभिमान को निकाल करके शिव स्वरूप में आत्माभिमान स्थापित कर दिया। तो नमस्कार हमेशा दूसरे को होता है, अब शिव स्वरूप बन गए तो भविष्य में नमस्कार नहीं हो पाएगा। अभी तक ये अपनी अहंता हम अलग रख करके ही सब करते रहे, अहंता को अलग रख करके नमस्कार ये औपचारिकता है, ये साधन भूत ये इस नमस्कार का साधन नमस्कार हो सकता है। लेकिन मुख्य साधन भूत नमस्कार तो एक प्रकार से वो है मुक्ति का साधन भूत नमस्कार। एक बार अपनी अहंता को अपने उपाधि में से निकाल लिया और परमात्मा में स्थापित कर दिया। और ये अहंकार ही तो सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। वो हम चाहे कोई भी साधना कर, लौकिक कर्म करें या शास्त्रीय कर्म कर ले, धर्म कर ले, वेदांत चिंतन भी कर ले, वैरागी भी बन जाए, त्यागी भी बन जाए, विरक्त भी बन जाए, लेकिन ये जो अहंकार है ये अहंकार ही हमें ठीक से ओ भगवान को नमस्कार नहीं करने देता। क्योंकि जिजीविषा सब में होती है ना, जिस दिन हम भगवान को अहंकार समर्पित कर देंगे तो अहंकार अहंकार ही नहीं रहता है, वो अहम बन जाता। अहंकार अलग है, अहम अलग है, अहम है वास्तविक स्वरूप आत्मा, और अहंकार तो है आपको संसार में ही बनाए रखने वाला। जब तक अहंकार रहेगा तब तक जन्म मृत्यु जीव का होता रहेगा। और भगवान में अहंकार समर्पित करते तो वो अहंकार जल जाता है, रहता ही नहीं। इसलिए अहंकार क्या करता है कि हमेशा वह नमस्कार, आपके मुक्ति का हेतु जो नमस्कार है वो नमस्कार न हो सके आपसे, ऐसा ही कार्य करता रहता है, सोचता रहता है। कहते हैं आप, हाँ तो घड़ी कहते हैं रुकिए, नहीं तो एक श्लोक याद आया था लेकिन इसको देखें कल। और ऐसे तो ये पूरा हुआ ईशावास्योपनिषद मंत्र का शांति पाठ है ओम पूर्णमदः इत्यादि पर कल विचार करेंगे। और भी समय यदि बचा तो आप लोग जो रोज शांति पाठ बोलते हो ना, शन्नो मित्र शं वरुण, ये तीन मंत्र, इस पर भी विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। पूज्य महाराज जी के चरण में प्रणाम। आज 27 नवंबर मंगलवार, अब शांति पाठ होगा। हरि ओम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।